29वां बाब। मुल्के मुआब में इसराइलियों के साथ खुदावन का अहद। इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावन ने मूसा को मुआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हूरब में बांधा था। सो मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवा कर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावन ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्के मिस्र में फिराउन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा है। इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावन ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे और ना देखने की आंखें और सुनने के कान दिए। और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव की जूती पुरानी हुई, और तुम इसीलिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाए ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और जब तुम इस जगह आए तो हसबून का बादशाह सेहून और बसन का बादशाह ओज हमारा मुकाबला करने को निकले और हमने उनको मारकर उनका मुल्क ले लिया और उसे रूबीनियों को और जद्दियों को और मनसियों के आधे कबीले को मीरास के तौर पर दे दिया। पस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और सब इसराइली मर्द और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरी खैमागाह में रहता है, खा वो तेरा लकड़हारा हो खा सक्का, सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे और वो तेरा खुदा हो जैसा उसने तुझसे कहा, जैसी उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इजहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं इस अहद और कसम में फक्त तुम ही को नहीं पर उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हजूर यहां हमारे साथ खड़ा है और उसको भी जो आज के दिन यहां हमारे साथ नहीं उनमें शामिल करता हूं। तुम खुद जानते हो कि मुल्के मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरूह चीजें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी जो उनके हां थी। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की परस्तिश करे, या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो इंद्रायन और नागदौना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि खा मैं कैसा ही हट्टी होकर तर के साथ खुश्क को फना कर डालूं तो भी मेरे लिए सलामती है, पर खुदावंद उसे मुआफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बर अंगेखता होगी और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी और खुदावंद उसके नाम को सफाए रोजगार से मिटा देगा। और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी हैं उसे इसराइल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा, और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदावंद की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता ना पैदा होता और ना किसी किस्म की घास उगती है, और वो सदूम और अमूरा और अदमा اور زبوعیم کی طرح اجڑ گیا، جن کو خداون نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر ڈالا۔ تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداون نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا، اور ایسے بڑے قہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے۔ اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا، اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے اور جن کو خداوند نے ان کو دیا بھی نہ تھا۔ اسی لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لعنتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غضب اس پر بھڑکا، اور خداوند نے قہر اور غصے اور بڑے غضب میں ان کو ان کے ملک سے اکھاڑ کر دوسرے ملک میں پھینکا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔